परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय साधन पाद। प्रथम अध्याय में योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने अभ्यास और वैराग्य से साधना का आरंभ बताया। धैर्यपूर्वक इनके सतत अभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यास किसका करे, ईश्वर का स्वरूप बताया जो क्लेश और कर्मों से अत्यंत परे है। वह ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का सहज बीज है। उसका नाम प्रणव है। उस ओम का जप करें, ईश्वर का चिंतन करें। इससे योग मार्ग के विघ्न शांत होंगे, आप समाधि की ओर अग्रसर होते जाएंगे। उन्होंने समाधि के सहयोगी साधनों का उल्लेख किया। स्वप्न से सहयोग, आप्त पुरुषों की रहनी और उनके दर्शन से सहयोग लेने का निर्देश दिया। योग का अनुष्ठान जो आपको अभिमत है उसके अनुकूल आशय बदल लेने की सम्मति दी। फिर भी ध्यान जमता नहीं, निरंतर अभ्यास होता नहीं, नाम रूप में चित्त टिकता नहीं। अतः इस द्वितीय अध्याय साधन पाद में संपूर्ण साधन विधि प्रस्तुत करते हैं, जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन लोक विश्रुत है। सर्वप्रथम महर्षि बतलाते हैं कि साधन आरंभ कहां से होता है।
तपः स्वाध्याये स्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः।
तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्रणिधान अर्थात शरणागति से योग की क्रिया आरंभ होती है। गत अध्याय में महर्षि ने एक ईश्वर का स्वरूप, एक ईश्वर की शरण और उसके नाम का जप बताया। अब प्रस्तुत अध्याय में वे कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना तप है। अपने मन का स्वयं अध्ययन करना स्वाध्याय है कि मन कितना लगना चाहिए और कितना लगा पाया हूं, आप्त पुरुषों की वाणी के अनुरूप मैं कितना ढल पाया हूं, अभी कितनी त्रुटियां हैं। इस प्रकार स्वयं का अध्ययन करते हुए साधना में अग्रसर होना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात एक ईश्वर के प्रति मन, कर्म, वचन से समर्पण, बस इतना करते ही योग क्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया योग की आवश्यकता ही क्या है, इस पर कहते हैं
समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च।
इन क्रियाओं से समाधि के प्रति श्रद्धा भावना स्थिर हो जाती है तथा क्लेश क्षीण होकर बलहीन हो जाते हैं। जिन क्लेशों को क्षीण होना है वे कौन कौन से हैं?
अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये 5ों क्लेश ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा दुखदायक हैं। यही जन्म मृत्यु के कारण है, किंतु इनमें भी प्रधान है अविद्या।
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम्।
अविद्या परवर्ती 4 क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश का उत्पादक क्षेत्र है। ये क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में रहते हैं। अस्मितादि सभी क्लेशों का कारण अविद्या है। ये चारों अविद्या से ही जागृत होते हैं। ये चारों मिट भी जाएं, अविद्या बनी रहेगी। यही संत कबीर के प्रस्तुत भजन में भी है। पांच सखी पांचों गुणवंती, पांच में सर्वस एकई जनी, बलम संग सोई गई पांचों जनी। क्लेश जब अपना कार्य नहीं करते, वह उनकी प्रसुप्त अवस्था है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हैं ही नहीं, वे हैं किंतु क्रियाशील नहीं है। उद्दीपन पाने पर वे क्रियाशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, देवर्षि नारद हिमालय की कंदरा में तप करने लगे। हरि के स्मरण मात्र से एक स्थान पर दो घड़ी से अधिक न रुक पाने वाले दक्ष के श्राप की गति कुंठित हो गई। तपस्या से इंद्र विचलित हो उठे। उन्होंने मुनि को तपस्या से विरत करने के लिए अप्सराओं को प्रेरित किया, किंतु काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। देवर्षि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम ने उपाधि भी दे डाली कि आप जितेंद्रिय हैं, मनोनिग्रही हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम को सदा सदा के लिए जीत लिया था। वह विकार प्रसुप्त था। शील निधि राजा की सुंदर नगरी, सुंदर नर नारी तथा सुंदरी राजकन्या और उसकी हस्तरेखा देखते ही प्रसुप्त विकार जागृत हो गया। वह कहीं गया नहीं था, सुप्त था। इस प्रकार क्लेश कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी योग साधन के फल स्वरूप उनका प्रभाव क्षीण अर्थात तनु हो जाता है। योग साधना द्वारा शनै शनै उनकी प्रभावोत्पादकता का ह्रास हो जाता है। तब ये हीन शक्ति वाले क्लेश अर्थात तनु कहलाते हैं। उन क्लेशों का जितना प्रभाव विषयी लोगों पर पड़ता है, उतना प्रभाव वे साधकों पर नहीं डाल पाते। क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था तब होती है जब दूसरे क्लेश क्रियाशील रहते हैं। जैसे कोई राग से आप्लावित है तो उस समय उसमें द्वेष दिखाई नहीं देता, वह विच्छिन्न है। वह कहीं गया नहीं है, किंतु उस समय ऐसा आभास होता है मानो दूसरे क्लेश हैं ही नहीं। जिस समय कोई क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो, वह उस क्लेश की उदार अवस्था है। जो भोग में आकर शांत होने वाला है, यही उसकी उदारता है। इन सभी क्लेशों का मूल कारण जिस अविद्या को इस सूत्र में कहा गया, उसका स्वरूप क्या है?
अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मुख्यातिरविद्या।
अनित्य, अपवित्र, दुख तथा अनात्मा में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य अर्थात नित्य एक रस दृष्टा पुरुष। संसार में शरीर और शरीरों के संबंध अनित्य हैं। इस अनित्य संसार को नित्य मान बैठना अविद्या है। इसी प्रकार जो अपवित्र है, अंततः दुखों का ही कारण है, उसे पवित्र मानना, उसी में सुख की अनुभूति करना अविद्या है। संत कबीर की साखी में है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, आत्मा ही सत्य है और समस्त भूतादिकों के शरीर नाशवान है, इनका अस्तित्व नहीं है, यह सब अनात्मा है। फिर भी शरीरों को आत्मा मानना अविद्या है, यही सब दुख के कारण है। फिर भी उसी सांसारिक वातावरण में ऐश्वर्य और सुख की मान्यताएं गढ़ लेना अविद्या है। सारांशतः, जो परमात्मा नहीं है उसी को भगवान माने हुए लोग बैठे हैं। इस प्रकार अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा मानना उसमें व्यस्त रहने का नाम ही अविद्या है। अब शेष क्लेशों में अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं।
दृग्दर्शन सत्योरेकात्मते वास्मिता।
दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष तथा दर्शन शक्ति अर्थात मन बुद्धि चित्त और इंद्रियां जिन उपकरणों पर दृश्य उभरते हैं इन दोनों की एक रूपता अस्मिता है। दृष्टा चेतन है और उपकरण जड़। दृष्टा अपने को मन बुद्धि चित्त इत्यादि मान बैठता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन का जड़ के साथ यही मिश्रण अस्मिता नामक क्लेश है। अब देखें राग।
सुखानुसई राग।
सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाले मन के स्वभाव को राग कहते हैं। जिस किसी वस्तु में सुख की प्रतीति होती है तुरंत उससे लगाव हो जाता है। यह भी एक क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति तथा उसे सदैव भोगने की आकांक्षा आसक्ति है, यही राग है। यह राग नामक क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार द्वेष का स्वरूप देखें।
दुखानुसई द्वेषः।
प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में दुख की प्रतीति होती है मन उसका विरोध करने लगता है, यही द्वेष नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति द्वेष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ।
इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। साधन पथ के ये दुर्जय शत्रु हैं। इनके वश में नहीं आना चाहिए। राग और द्वेष इंद्रियों और भोगों के टकराव से होते हैं। भोग अनुकूल मिला तो राग तथा प्रतिकूल मिल गया तो द्वेष का भाव पनपने लगता है। साधक को इनसे सतर्क रहना चाहिए। अब अंतिम क्लेश अभिनिवेश का स्वरूप बताते हैं।
स्वरस्वाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः।
पूर्व निवास के प्रति ममत्व अभिनिवेश है जो मूढ़ों की ही भांति विवेकशील पुरुषों में भी परंपरागत स्वभाव से विद्यमान है। जहां हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव आकर्षण अभिनिवेश है। यह स्वर में प्रवाहित होकर जन्म जन्मांतरों तक पीछा करता है। सांसारिक निवास हमारा घर नहीं है, इसे हमने अपना मान भर रखा है। तवन घर चितिहे रे भाई तोहरा आवा गमन मिट जाए, कह कबीर निज घर चलो जहां काल नहीं जाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान ले किसी ने पूर्वाग्रह त्यागा और शरण चला ही गया तो उससे लाभ? भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है। यही है आपका घर, जहां आपका जीवन सदैव रहेगा, निवास रहेगा। साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति होनी है, किंतु एक पल पूर्व तक यह अभिनिवेश पीछा करता है। पूज्य गुरुदेव को विचरण काल में मधवापुर में चातुर्मास्य करने का निर्देश भगवान से मिला था। वहां महाराज सायंकाल विचरण में निकलते थे। एक गृह के समीप पहुंचने पर मन में आकर्षण होने लगा कि घर में घुस जाएं, मानो यह अपना ही घर हो। दो तीन बार ऐसा ही आकर्षण होने पर आपने इष्ट से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में 2-2.5 महीने इस घर में जन्म लेकर रहने का संस्कार पीछा कर रहा है। आपको जन्म देने वाली माताजी अभी जीवित है। महाराज जी ने भक्तों से जानना चाहा कि उस घर में क्या किसी 2-2.5 महीने के बच्चे का देहांत हुआ है। गांव में चर्चा हुई। वह वृद्धा मां महाराज जी के पास आई, रो रो कर उस पुत्र के गुणों का वर्णन कर रही थी, किंतु महाराज जी ने अनुभव में प्राप्त संकेतों को प्रकाशित नहीं किया। जीव प्रकृति में जहां जहां भी रहता आया है, पूर्व निवास का आकर्षण उसे खींचता रहता है। चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधि की अवस्था में यह क्लेश भी शांत हो जाता है, केवल अविद्या जीवित रहती है। बीज के शांत होने पर वह भी शांत हो जाता है। कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है, किस किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता भर है, किंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन सब के लिए शोक नहीं करते। शरीर में जैसे बाल्य, कैशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्थाएं आती हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है। इसमें धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। योग साधना में महापुरुषों ने यह भय छोड़कर ही प्रवेश लिया है, किंतु जीव जहां अब तक जीवित रहा है, उस पूर्व निवास के प्रति स्वाभाविक खिंचाव अंतिम संस्कार तक पीछा करता है और मूढ़ों की भांति विवेकशील व्यक्तियों में भी पाया जाता है।
ते प्रति प्रसव हे आह सूक्ष्माः।
क्रिया योग से सूक्ष्मावस्था को प्राप्त वे क्लेश आत्मपथ के विरोधी विकारों को ही प्रसव उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए हे याह नष्ट करने योग्य है। क्लेशों से विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस पर कहते हैं,
ध्यान हे यास तद्वृत्त्यः।
क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान द्वारा नाश करने योग्य हैं, अर्थात क्लेशों के निरसन के लिए ध्यान धरना है। ध्यान की विधि तीसरे पाद के द्वितीय सूत्र में द्रष्टव्य है, जहां कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहां लगाया जाए, वहां वृत्ति का एक रस चलना, उच्चाटन न होना ध्यान है। ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये शुभाशुभ संस्कार दुख के ही कारण है।
क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः।
क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है, तब तक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट अर्थात वर्तमान में तथा अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, वे किस रूप में प्रकट होते हैं।
सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।
क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तद्विपाक उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम जन्म पुनर्जन्म आयु और भोग होता ही रहता है। परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं।
तेह्लाद परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वात्।
वे जन्म आयु और भोग हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण दो हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म है तथा पतोन्मुख कर्म पाप कर्म है। पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म आयु और भोगों के रूप में परिताप प्रदान करते हैं। विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है।
परिणाम ताप संस्कारो दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिनः।
परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख सब में विद्यमान रहने के कारण एवं तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए सब कर्म फल दुख रूप ही है। प्रत्येक कर्म फल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। आज हर्ष भले मान ले, कल इसमें संश्लिष्ट दुख भी आएगा। उसके पास अधिक भोग है, हमारे पास कम क्यों? ऐसी भावना ताप दुख कही जाती है। कभी कभी न चाहता हुआ भी हठात दुख को प्राप्त हो जाता है, यह संस्कार दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच्च सत रज तम तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम प्रदान करती है। सात्विकी वृत्ति प्रकाश की ओर ले जाती है, जबकि तामसी वृत्ति अंधकार की ओर प्रवृत्त करती है। इस प्रकार एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुणवृत्ति बाधक बन जाती है। इसीलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूप ही हैं। अतः इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है,
विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्।
जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जन्म आयु और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है, इसलिए उसका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है।
हेयं दुःखमनागतम्।
अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई दुनिया की रीति यही। कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया वह तो बीत ही गया, कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहा है, किंतु जो दुख अभी आया नहीं है, अनागत है, आने वाला है, वह दुख हेय है, नष्ट करने योग्य है। प्रश्न उठता है कि नष्ट कैसे करें, उसकी विधि क्या है।
दृष्टृदृश्योः संयोगो हेय हेतुः।
दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण अर्थात उपाय है। पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं।
प्रकाश क्रिया स्थितशीलम् भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थम् दृश्यम्।
प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप हैं, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा वह दृश्य है। प्रकाश एक परमात्मा में है, प्रकृति में अंधकार है। ईश्वरीय प्रकाश आत्मस्वरूप की ओर ले जाना, प्रकाश का बोध कराना, उसके लिए क्रियाशील करना, योग साधना में लगाना, प्रवृत्त करना और स्थिति दिलाना, दृश्य का यही प्रयोजन है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है भूत है, भूत और इंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह भोग सांसारिक नहीं है। इष्टान भोगान हि वो देवा। इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। जो भोग आपको अभीष्ट है उसके संपादन में क्या क्या चाहिए, वह सुविधा प्रदान करना दृश्य का कार्य है। भगवान का भोजन यही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तप स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन है उन्हें मैं खाता हूं, यही भगवान का भोजन है। अस्तु, पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोगों की व्यवस्था करना तथा अंत में मुक्ति का भली प्रकार संपादन करना, मुक्ति पर्यंत दूरी तय करा देना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष देती। प्रकृति तो संसार में फंसाने वाली है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है। यहां दृश्य प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है वह दृश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है वह दृश्य है। अनुभव में इन भूतों में से जीव जगत से कुछ भी दृश्य आ सकता है जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। यज्ञ तप इत्यादि साधन जुटाना और मुक्ति पर्यंत दूरी तय कराना जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है। यह दृश्य जिस विधि से प्रसारित करते हैं उस प्रसारण सूत्र का नाम शब्द है। दृश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है, इस पर कहते हैं
विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुण पर्वाणि।
विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग गुण पर्वाणि, गुण भेद से इन चार विधियों से दृश्य चलता है। विशेष परमात्मा है, पुरुष विशेष ईश्वर। विशेष का बोध कराना, अविशेष अर्थात प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। सचेत हो जाओ, अभ्यास बढ़ाओ, विशेष ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो, साधना ठीक है। लिंग मात्र स्वरूप प्रकट कर समझना, अलिंग अदृश्य रूप से समझाना, जैसे अंग स्पंदन आकाशवाणी या अदृश्य संकेत से भगवान समझाते रहते हैं। कोई दृश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है, गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। रामचरितमानस में है, जग उपेखन तुम देख निहारे, बिधि हरि संभु नचाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हाही को जान निहारा। जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। विधि परमात्मा की प्रशक्ति जिससे साधना जागृत होती है, हरि जो भरण पोषण करता है, शंभु जो शुभ अशुभ संकल्पों का संहार कर स्थिति प्रदान करते हैं, इनको नचाने वाले, इन्हें संचालित करने वाले स्वयं भगवान हैं। वे संचालित तो होते हैं, किंतु ईश्वरीय रहस्य वे भी नहीं जानते, अन्य कोई क्या जानेगा। अर्थात भगवान रथी होते हैं, संचालन करते हैं। अब दृष्टा का स्वरूप बताते हैं।
दृष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः।
चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है। दृष्टा देखकर करता क्या है?
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा।
उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपवर्ग की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है।
कृतार्थम प्रतिनष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्।
जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो गया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ, वह दृश्य नष्ट नहीं होता। उसके लिए अब दृश्य की आवश्यकता न रह जाने पर भी अन्य साधारण लोगों के लिए उसका उपयोग है। यही महापुरुष सद्गुरु होते हैं। उनके पास दूसरों में दृष्टा दृश्य संयोग प्रसारित करने की जागृति रहती है। दूसरों के लिए दृश्य का उपयोग है, महापुरुष के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन करें। दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात अंततः वे आए। यही हम लोगों के सतीर्थ अग्रज और महाराज जी के प्रथम शिष्य हुए। उस दृश्य का उन महापुरुष के लिए कोई उपयोग नहीं है, किंतु जागृति की यह प्रशक्ति उनमें अन्य लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो भजन की जागृति एक ऐसी विद्या है कि लिखने पढ़ने सुनने से नहीं आती, वाणी से वह कहने में नहीं आती, वह तो किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। अतः साधारण लोगों के कल्याण के लिए उस दृश्य का उपयोग है। अब दृश्य और दृष्टा के संयोग का स्वरूप बतलाते हैं।
स्वस्वामी सत्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः।
स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है, अर्थात दृश्य और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना, जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है वह संयोग है। दृश्य और दृष्टा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कार्य करने लगे, यही है संयोग। इसी से भजन जागृत होता है। संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी?
तस्य हेतुः अविद्या।
इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया? इसका कारण भी अविद्या ही है। न ये होती न दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता है न संयोग की उपयोगिता।
तद्भावात् संयोगाभावो हानं तद्दृश्येह कैवल्यम्।
उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान पुनर्जन्मादि के कारण भूत वर्तमान और भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। यह कैवल्य पद कैसा है? दुखों का अत्यंत अभाव हान कब हो जाता है?
विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः।
निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं? अतः वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है न मुक्ति का संपादन शेष है। पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव हान है। वही इस चेतनात्मा का कैवल्य है। निश्चल निर्दोष विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय है। उस समय
तस्य सप्तधा प्रांत भूमिः प्रज्ञा।
उस विवेक ख्याति ज्ञान की सात अवस्थाएं होती हैं। सातों भगवत पद की सात भूमिकाएं हैं। महर्षि ने तो इनका नामोल्लेख नहीं किया, किंतु अन्यान्य ग्रंथों में इन्हें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा कहा गया है। यह विवेक ख्याति कब प्राप्त होती है? इस पर कहते हैं,
योगांगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति।
योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है। ख्याति अर्थात ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका है। वह है विवेक ख्याति। इसके पश्चात रह जाता है कैवल्य पद। किंतु इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान ही एक माध्यम है। अब योग क्या है? इसके कितने अंग हैं?
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्ठावंगानी।
योग के आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का वर्णन करते हैं।
अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः।
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। इन यमों की विशेषता बताते हैं।
जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्।
उपर्युक्त यम जाति देश काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काक भुशुंडी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे, उन सब में यमों का पालन होता रहा। इस तरह देश में अर्थात नाम रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा लें। काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्राह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों अर्थात जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इस प्रकार की शर्तें, इनसे यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका आचरण होने लगता है, तब यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन कर अब नियमों का वर्णन करते हैं।
सोच संतोष तपह स्वाध्याय सर्वप्रणिधानानि नियमाः।
शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन पांचों का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें?
वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्।
विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें?
वितर्का हिंसा दय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्।
यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं, जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह में संग्रह, शौच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें वितर्क, विरोधी तर्क कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए तथा अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है। इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्षी विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये पुनः नरक की ओर, पतन की ओर ले जाएंगे। यही सब तो अभी तक किया गया, फिर वही। हे मन, तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है, किस महापुरुष की शरण में हो? क्या अपने साथ गुरु महाराज की विमल कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे? मन को इस तरह समझाना प्रतिपक्ष भावना है। अब यम नियमों की पराकाष्ठा बताते हैं।
अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः।
अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सब प्राणी वैर त्याग देते हैं, क्योंकि उनके चतुर्दिक वायुमंडल शांत रहता है। ऐसे महापुरुषों के निवास स्थल आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है। मानस में है कि जब से भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास करने लगे, करी के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। पूज्य गुरु महाराज अनसुईया के बीहड़ वन प्रांतर में निवास करते थे, जहां शेर, भालू, लंबे लंबे सर्पों का बाहुल्य था। किंतु इन वन्य हिंसक जीवों द्वारा आश्रम परिसर में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई। भगवान महावीर स्वामी का निर्णय है कि आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले जितने भी विकार हैं, वही हिंसा के कारण है। इन विकारों का निरोध कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है। वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को मारना मात्र नहीं है, बल्कि आत्मपथ से विचलित हो जाना ही हिंसा है, और आत्मपथ की ओर अग्रसर होना अहिंसा है। अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश जीव का परम कल्याण है, अतः आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर अहिंसा का प्रयोग किया है। योग विधि यज्ञ के 14 लक्षणों में संचित व्रत अहिंसा है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति है। स्वरूप में स्थित महापुरुष क्षेत्रज्ञ हैं, और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों में एक है अहिंसा। दैवी संपद जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, मोक्ष प्रदान करती है, उनमें इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी इत्यादि 26 लक्षणों में एक अहिंसा है। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु और आत्मा ही मित्र है। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती गई हैं, उसके लिए उसी की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, परम कल्याण करने वाली होती है। जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधम और निम्न योनियों का कारण बनती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। अहिंसा प्राप्त महापुरुष के सन्निकट इस वैर के कारणों का त्याग हो जाता है, संयम सधता जाता है, आत्मा की स्थिति मिलती जाती है, आत्मोद्धार होता जाता है। यह शिक्षा महापुरुष देते हैं। अतः अहिंसा किसी विरले महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है। ऐसे महापुरुष के चतुर्दिक एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो जाता है। जैसा काकभुशुंडी आश्रम का प्रभाव था कि व्यापहि तहना अविद्या जोजन एक प्रजंत, वहां का वायुमंडल शुद्ध और शांत हो जाता है। उनकी परिधि में जो भी पहुंच जाता है उसमें भी योग के संस्कारों का सूत्रपात हो जाता है। वैरत्याग, दुनिया में वैरी काटे जाते हैं, अहिंसा में त्यागे जाते हैं। वैरी कौन है? मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम।
अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश कभी न तृप्त होने वाले दुर्जय शत्रु हैं। ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले ये निरंतर वैरी हैं। महापुरुषों की सन्निधि में इन वैरियों का अंत हो जाता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सुरत अर्थात मन की दृष्टि जो वायु से भी तेज चलने वाली है स्थायित्व ले ले। इस निरोध के साथ जो छिपी सत्ता है वह है कल्याण तत्व दृष्टा आत्मा। उसके स्पर्श के साथ ही जिसे धारण करना था धर्म को, वह कार्य पूर्ण हुआ। यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग से हटकर अहिंसा की राह पर आ जाते हैं, जैसे वाल्मीकि, अंगुलीमाल इत्यादि। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में अनसुईया क्षेत्र के दस्युओं की वृत्ति बदल गई, वे भजन करने लग गए। दूसरा यम है सत्य, उसकी पराकाष्ठा कहां तक है?
सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्।
सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रियाफल का आश्रय प्राप्त हो जाता है। सत्य केवल दृष्टा आत्मा है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है नश्वर है। इस सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गई, श्रद्धा केंद्रित हो गई, समर्पण सदा, साधना गतिशील हुई, तो क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया का फल है परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल जाता है। अर्थात भगवान विधिवत योग क्षेम करने लगते हैं। यम का तीसरा अंग अस्तेय, देखें।
अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम्।
प्रायः चोरी के अभाव को अस्तेय कहा जाता है। चौर्य वृत्ति का अभाव होते ही योगी के समक्ष सभी रत्नों को प्रकट हो जाना चाहिए। आपके शास्त्रों में समुद्र मंथन से निःसृत 14 रत्नों का उल्लेख है। श्री मणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम शशि धेनु धनु, धनवंतरी विषबाज। मान ले अचौर्य वृत्ति दृढ़ हो गई, योगी के समक्ष रंभा या वारुणी प्रकट हो गई, तो वह करेगा क्या? उसके शांत एकांत भजन में ये भयंकर विघ्न है। रंभा विश्वामित्र के समक्ष पहुंची तो उनका पतन हो गया। अतः अस्तेय या रत्नों का यह आशय संगत प्रतीत नहीं होता। भगवान महावीर से एक राजा ने प्रश्न किया, भगवन सद्गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्याण कैसे हो? उन्होंने बताया, राजन त्रिरत्न धारण करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि, तीर्थंकर अर्थात तीर्थ स्वरूप महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करें, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधन विधि ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें, यही त्रिरत्न है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, सद्गुरु के समक्ष जो हृदय में हो वही जुबान पर हो। हृदय में कुछ और जुबान पर कुछ और, ऐसा साधक तभी सफल नहीं होता। भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, वह भाव कुभाव सब जानता है। संकल्प बाद में उठते हैं, भगवान पहले ही बता देते हैं कि कब विजातीय संकल्प आने वाले हैं। वितर्क पैदा हुआ नहीं, परिस्थिति का खतरा आया नहीं, उसके पहले ही भगवान बता देते हैं। साधक तुरंत सावधान हो जाता है। अस्तु, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी जीव का स्वभाव है कुछ न कुछ कपट रहता ही है। जब यह दुराव समाप्त हो जाता है तो नवम सरल सब सन छल ही ना हो जाता है। तो साधना में सहायक सभी रत्न, विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि आवश्यकता अनुसार योगी के समक्ष प्रकट होते रहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का परिणाम बताते हैं।
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ।
ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। मात्र जननेन्द्रिय संयम से ही ब्रह्मचर्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकने किंतु मन से विषयों का चिंतन करने वाला दंभाचारी है। अपने पूर्व जन्मों का संस्मरण सुनाते हुए पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि गत जन्म में उनकी निवृत्ति हो चली थी, किंतु मन में दो एक इच्छाएं शेष थीं कि शादी ब्याह क्या होता है और लोग गांजा पीकर मस्ती में भजन करते हैं, इसमें कितना आनंद है। उस जन्म में इच्छा रहने पर भी न तो विवाह किया और न गांजे का स्पर्श ही किया, किंतु मन में एक कौतूहल था इसलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने थोड़े ही समय में शादी विवाह कराकर, दिखा सुनाकर, दो एक झड़कियां देकर साधु बना दिया। आकाशवाणी मिली कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उन तपोधन के सानिध्य में स्वल्प समय में ही साधना जागृत हो गई। भगवान रथी हो गए, योग क्षेम करने लगे, भजन के लिए जगाने, उठाने, बैठाने लगे। भोजन पर भगवान ने नियंत्रण लगा दिया, यह खाओ यह न खाओ। जागरण शयन संतुलित कर दिया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जैसे कोई अपना गड़ा धन पा जाए, योग की विभूतियां मिलने लगीं, रत्न प्रकट होते गए। उस जन्म में पूज्य श्री ब्रह्मचारी ही तो थे, संयम के पक्के थे, फिर भी जन्म लेना पड़ा। कुतर्क शांत होता है ब्रह्माचरण से, मन सहित इंद्रियों को समेटकर ब्रह्म चिंतन में लगने से। ब्रह्माचरति सब्रह्मचारी। आंखें दूसरा न देखें, कान दूसरा न सुने। कानों से विषयोत्तेजक बातें सुनकर, आंखों से उत्तेजक दृश्य देखकर शरीर को बचाए रखना सर्प के मुख में उंगली डालकर बचने के समान है। ब्रह्माचरण से, सतत चिंतन से सकलेंद्रिय संयम सध जाता है, उसी से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आती है। ब्रह्मचर्य में स्थिति दृढ़ होने पर वीर्य लाभ, सामर्थ्य का लाभ होता है। आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है। जिस मन को हट से भजन में लगाना पड़ता था, सहज ही भजन में लगने की सामर्थ्य आ जाती है। विघ्नों के आने पर भी वह पीछे नहीं हटता। मीरा पीछे नहीं हटी, जहर का प्याला, शूली की शैया भी उसे विचलित न कर सके। प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया, समुद्र में डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, विघ्न आए और निकलते चले गए। साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने की सामर्थ्य आ जाती है। अब उसे प्रयास पूर्वक मन को नहीं लगाना है। नोट: सकलेंद्रिय संयम में भी जननेन्द्रिय संयम ब्रह्मचर्य की अनिवार्य शर्त है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि गृहस्थों द्वारा इस संयम में भूल चूक होने पर भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु साधु वेश में ऐसी भूल हो जाने पर भगवान कभी क्षमा ही नहीं करते। ऐसे पतित साधक के लिए शरीर त्याग ही एकमात्र प्रायश्चित है। अब देखें अपरिग्रह।
अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथंता संबोधः।
अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर जन्म कथंता संबोधः, पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह का अभाव या कुछ भी न रखें अपरिग्रह है। जंगल निवासी आदिवासी जनता प्रातः जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं। दिन भर में जो कुछ अर्जित किया उससे येन केन प्रकारेण उदर पूर्ति ही कर पाते हैं। उनके घर खुले हैं, जमीन पर शयन, संग्रह के नाम पर एल्यूमिनियम के दो एक पिचके हुए बर्तन, सब के सब अपरिग्रही। पूर्व जन्म तो दूर की बात है, कल क्या बीतेगी इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्राट होते हुए भी राजर्षि जनक अपरिग्रही थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं है जितना चिंतन से। चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह न हो। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले बुरे संकल्प उठने लगते हैं। उस अवस्था में साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्मों के कितने संस्कार शेष थे, उनका निदान और कब तक उनसे निवृत्ति होगी इसका ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार यम में स्थिति का परिणाम बताकर महर्षि नियमों के आचरण का फल बताते हैं। नियम पांच है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें से प्रथम है शौच।
शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः।
शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा बलवती होती है। शौच का अर्थ शरीर की सज्जा, केश विन्यास या प्रसाधन नहीं है। इससे शरीर के अंगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय नहीं होता, प्रत्युत यह ममत्व का ही परिचायक है। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व प्रदान नहीं किया। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होई। भजन मन से होता है, यह मुख्यतः मानसिक क्रिया है, शरीर को सजाने सवारने से उसका प्रयोजन नहीं है। हमारे गुरु महाराज 6-6 महीने 1-1 वर्ष तक स्नान नहीं करते थे, सदा श्वास में सुरत लगाकर बेगम अर्थात निश्चिंत रहते थे। कोई पूछता तो वह कहते, जब कोई कष्ट नहीं है नहाने धोने में अकारण समय क्यों नष्ट करें। फिर भी देखने से अनुमान भी नहीं होता था कि इन्होंने स्नान नहीं किया। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाए, शरीर का भान ही न रहे, सुरत चिंतन में लगी रहे। इससे स्वांगों में विरक्ति आ जाती है और परैह असंसर्गः, दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। पूज्य महाराज जी जब चिंतन में बैठते थे, कोई आकर उनके पास बैठता, पूज्य चरण बतलाते थे, मन करता था कि यह कितना शीघ्र उठकर चला जाता। क्रमशः लोग दूर होने लगे। दूसरों से असंग रहने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है, स्नान किया है या नहीं भान ही नहीं रहता, शौच से कुछ अन्य क्षमताओं का विकास भी होता है।
सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च।
और इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। अंतःकरण शांत और चिंतन में प्रवाहित होने की क्षमता वाला हो जाता है। चिंतन में अनुरक्ति देखकर मन में प्रसन्नता बढ़ती है, चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि अंतःकरण की धुलाई ही शौच है। अब दूसरा नियम संतोष देखें।
संतोषादनुत्तम सुखलाभ।
संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है। संतोष की पराकाष्ठा में उन प्रभु से तोष मिलने लगता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है। इस आनंद सिंधु की एक बूंद से त्रैलोक्य तृप्त हो जाता है। परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है। संतोष से कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि जब सम उस परमात्मा का तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करें। आगे ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसकी स्पृहा हो सके। अब तप का सर्वोपरि परिणाम बताते हैं।
कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षया तपसः।
तप के अनुष्ठान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब कायेन्द्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। उस समय इंद्रियों को जहां चाहे आप लगा सकते हैं, सर्दी गर्मी जिस वातावरण में रखना चाहे राग द्वेष से रहित रख सकते हैं। सामान्य जीव जहां तहां इंद्रियतान्यों, इंद्रियों के बहाव में खींच जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि विषयों में विचरती हुई जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष के मन का अपहरण उसी प्रकार कर ले जाती है, जैसे झंझावात नाव का अपहरण कर उसे डुबो देता है। इसलिए पहले इंद्रियों का संयम कर मन को साधना में लगा। मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना तप कहलाता है। अब देखें स्वाध्याय का स्वरूप।
स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः।
स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। मुझे साधन में कितना समय देना चाहिए, कितना दे पाता हूं, इसका निरीक्षण करते हुए, सदैव सचेत अवस्था में रहते हुए, समझते हुए, साधन रत रहने से इष्ट देवता संप्रयोगः, योग की अवस्था इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान की पराकाष्ठा देखें।
समाधि सिद्धे ईश्वर प्रणिधान।
ईश्वर की शरणागति तथा मन क्रम वचन से उनके प्रति समर्पण एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर पर निर्भर करने वाले साधक का योग क्षेम भगवान स्वयं देखते हैं। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाधि अर्थात सम और आदि तत्व ईश्वर के साथ समत्व प्राप्त होने में शीघ्र सफलता मिल जाती है। अब आसन का स्वरूप देखें।
स्थिर सुखम आसनम,
निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहां? सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। यह आसन कैसे सिद्ध होता है यह बताते हैं।
प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति भ्याम,
उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के ही बैठने का नाम आसन होता तो अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। अनेक विभूतियां ऐसी रही हैं, जैसे महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराज जी, जिनके पांव टेढ़े मेढ़े थे, आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी बनी ही नहीं, किंतु वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। प्रयत्न शैथिल्य अर्थात यम नियम तप स्वाध्यायादि में जो प्रयत्न चलता है उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, इनका पालन सहज स्वाभाविक होने लगे, एक बार जहां मन लगाया शांत प्रवाहित होने लगे, इस प्रकार एक परमात्मा में भली प्रकार मन लग जाने से आसन सिद्ध हो जाता है। अतः यह आसन मन का है, मन का स्थिरीकरण ही आसन है। भजन के लिए शरीर की एक निर्धारित मुद्रा है, जिसमें शरीर शिर मेरुदंड और गर्दन एक सीध में होने चाहिए, आंखें अर्धोन्मीलित नासाग्र दृष्टि आवश्यक है। किंतु महर्षि पतंजलि ने मन के शांत स्थिर टिकने को ही आसन की संज्ञा दी है। आसन मारे क्या भया, मुई ना मन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल को घर ही कोस पचास। मन में उभरने वाली आशाएं हैं जो स्थिर बैठने नहीं देती। आसन का प्रभाव क्या होता है?
ततो द्वंद्वानभिघातः,
आसन सिद्ध होते ही द्वंद्वों का आघात नहीं होता। राग द्वेष भले बुरे उद्वेग द्वंद्व हैं जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय उसकी अवस्था कैसी होती है?
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम।
उस आसन के सधते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। प्राणायाम अलग से कोई क्रिया नहीं है, अभ्यास किया गया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का, इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्धि और आसन सधते ही प्राणायाम। प्राण के व्यापार पर विराम लग गया, इस प्रकार यह स्थिति परिणाम जन्य है। यह यम नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है। श्वास जो लेते हैं, प्रश्वास जो त्यागते हैं। जैसे प्राचीन साहित्य में कहीं कहीं इसके विपरीत उल्लेख भी मिलते हैं, जिसमें प्राण जो त्यागा जाता है और प्रश्वास जो भीतर लेते हैं, ऐसा अर्थ किया गया है। किंतु अधिकांश मनीषियों ने श्वास या प्राण उसे कहा है जो हम ग्रहण करते हैं। आत्म उत्कर्ष के लिए आप लेते हैं विद्या, और आत्मा का पतन करने वाली अविद्या त्यागते हैं। इन दोनों की गति पर विराम लग जाना, जब त्यागना और ग्रहण करने की वृत्तियां शांत हो जाएं, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, इसी का नाम है प्राणायाम। आसन के सधते ही चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने लगती है। न भीतर से कोई संकल्प स्फुरित होता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही कारण है कि ऐसी अवस्था में चित्त शांत और स्थिर हो जाता है। यही श्वास प्रश्वास की गति का रुकना है। यदि आंतरिक या बाह्य वायुमंडल के संकल्प टकराते हैं तो स्पष्ट है कि अभी आसन नहीं सिद्ध है, क्योंकि आसन सधते ही संकल्प शांत हो जाते हैं, प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राण अंतःकरण को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार
सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते।
संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती हैं, प्राण कर्माणि प्राण कर्म करते हैं। बाहर इंद्रियां कर्म करती हैं, भीतर अंतःकरण में प्राण कर्म करते हैं। दोनों के कर्मों को ईश्वरीय निर्देशन से प्रकाशित आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करना योग है। सारांशतः अभ्यास यम नियमों का किया जाता है, इससे आसन की सिद्धि होती है। इसका ही उन्नत स्तर प्राणायाम है। उक्त प्राणायाम की अवस्था कैसे आएगी, इस पर कहते हैं
बाह्याभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म।
बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है, जो अविद्या से प्रभावित क्लिष्ट वृत्ति है। आभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है न आभ्यंतर चिंतन, अतः यह स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम क्रोध राग द्वेषादि किस देश में गया, कितने काल तक वह वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि आभ्यांतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका, वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर आभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। आभ्यांतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से, सचेत रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। प्राणायाम का अंतिम स्तर देखें।
बाह्य बाह्याभ्यांतरविषयाक्षेपी चतुर्थः।
बाहर और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठें, न आभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपद के ही संकल्प उठें। सुरत सहज प्रवाहित है, यह प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है जिसमें प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो शरीर की जीवनी शक्ति है, जैसे आंख कान नाक क्रियाशील है, वैसे ही श्वास शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसे रोकना घटाना या बढ़ाना नहीं है। श्वास के साथ भले बुरे संकल्प भी मिश्रित रहते हैं। दोनों ही प्रकार के संकल्पों को ग्रहण न करने की क्षमता प्राणायाम है। प्राणायाम में श्वास को कुछ नहीं करना होता है, केवल चित्त को विषयों से हटाना है। श्वास तो बच्चों में बच्चों जैसी, वृद्धों में वृद्ध जैसी, प्रौढ़ों या युवकों में उनके आयु के अनुपात में चलती ही है। इसमें छेड़खानी करने से बीमारी हो सकती है। चित्त बाह्य आभ्यंतर से स्तंभ वृत्ति में स्थिर करे। विषयों का शांत हो जाना, चित्त का शांत प्रवाहित स्थिर होकर चलना प्राणायाम है। इससे लाभ।
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्।
प्राणायाम के सधने से बाह्याभ्यंतर विषय शांत हो गए, प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया, प्राणों के व्यापार में विराम लग गया, प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह्य या आभ्यंतर वृत्तियों का था, वह आवरण क्षीण हो जाता है। रहता अवश्य है, किंतु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। इस प्राणायाम से एक अन्य लाभ भी है।
धारणासु च योग्यता मनसः।
प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सधते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। इससे उन्नत स्तर है प्रत्याहार।
स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।
जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। इससे लाभ। इस पर कहते हैं,
ततः परमा वशितेन्द्रियाणाम्।
उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियां भली प्रकार वश में ना आ जाएं। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में आ जाती हैं, उनमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार दूसरा पाद साधन पाद यही संपन्न होता है। निष्कर्ष। साधनपाद ने महर्षि ने बताया कि साधना आरंभ कहां से होती है। एक ईश्वर के प्रति समर्पण, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना अर्थात तप और स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन कि वृत्ति में योग विधि को कितना धारण कर पाए और कितनी त्रुटि रही। इस प्रकार अध्ययन करते हुए अग्रसर होने से योग क्रिया आरंभ हो जाती है। इस योग क्रिया के प्रभाव से क्लेश हल्के हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तनु बलहीन हो जाते हैं और समाधि की भावना परिपुष्ट हो जाती है। जो क्लेश क्षीण होते हैं उनके नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पांच क्लेश हैं। ये पांचों क्लेश जब कार्य नहीं करते तो प्रसुप्त, कभी तनु, बलहीन, कभी विच्छिन्न जैसे हैं ही नहीं और कभी उदार अवस्था में रहते हैं। एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा विच्छिन्न सा प्रतीत होता है जबकि वह यथावत है। इन सभी क्लेशों का आधार अविद्या है। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा मानना अर्थात असत्य में सत्य की प्रतीति होते रहना अविद्या है। प्रकृति और पुरुष, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक सा हो जाना अस्मिता है। रामचरितमानस में आता है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। जहां सुख मिला राग होगा। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। जिस किसी वस्तु या व्यक्ति से दुख होगा उससे द्वेष अवश्य होगा। जो स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान पाया जाता है, वह अभिनिवेश अर्थात पूर्व निवास के प्रति ममत्व, जो हमारा निवास स्थान नहीं है किंतु हमने उसे अपना मान रखा है, यह अंतिम क्लेश है। प्रकृति के अंतर्गत जीवन यद्यपि हमारा नहीं है, फिर भी अनादिकाल से उसी में रहते आने के कारण उसके प्रति लगाव अभिनिवेश है। जीव का शुद्ध निवास तो परमात्मा है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से बलहीन और सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य है। क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान के द्वारा शांत होती हैं। इन क्लेशों को नष्ट करना आवश्यक है क्योंकि इन कर्म संस्कारों का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। ये संस्कार पुण्य और पाप से होने के कारण हर्ष और शोक रूपी फल देते हैं। जो संस्कार हर्ष उत्पन्न करते हैं वे भी दुख रूप ही हैं, जन्म देंगे। गुण परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन के क्रम में सात्विक गुण तामसी गुण में ही ज्यों ही परिवर्तित होगा यह आह्लाद शोक में बदल जाएगा। इसलिए प्रायः सभी फल विवेकशील पुरुष के लिए दुख रूप है। इनका त्याग कर देना चाहिए। जो दुख अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, नष्ट करने योग्य हैं। ये नष्ट कैसे होंगे? दृष्टा और दृश्य का संयोग ही हेय हेतु हेय का साधन है। वास्तव में ईश्वर प्रणिधान होने पर वह ईश्वर किस प्रकार योगक्षेम करता है, कैसे दृश्य प्रसारित करता है, उसे संयोग कहते हैं। वह दृश्य नाम रूप या योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान को सही दिशा देने वाला है। इसके बिना क्लेश नष्ट होते ही नहीं। उस दृश्य और दृष्टा का मिलन संयोग है। यह मिलन ही हेय का साधन है। उन्होंने दृश्य का स्वरूप बताया जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला है। ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, प्राप्ति की क्रिया में आपकी अवस्था कैसी है, इस स्थिति का बोध कराना, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह दृश्य जीवित प्राणियों और इंद्रियों के द्वारा ही स्वरूप प्रकट करता है। यह दृश्य प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि यह दृष्टा के संसर्ग से संचालित है। दृश्य चार रूपों में प्रसारित होता है, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। पुरुष विशेष ईश्वर। दृश्य बताता है कि विशेष के परिवेश में आपकी पहुंच कैसी है, अविशेष प्रकृति है। दृश्य से सूचना मिलती है कि प्रकृति का कितना दबाव आपके ऊपर है। कभी यह दृश्य मूर्त रूप में अर्थात लिंग रूप में प्रकट होता है, और कभी भगवान अमूर्त होकर समझाते हैं। आकाशवाणी, अंग स्पंदन आदि जिसके कई रूप हैं। दृष्टा आत्मा चेतन ज्ञान स्वरूप और स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, किंतु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में वृत्तियों का जैसा दबाव है, उसी आधार से यह दृश्य प्रसारित करता है। दृश्य का प्रयोग केवल दृष्टा के लिए है, किंतु जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो चुका है, उस पुरुष के लिए इस संयोग का कोई उपयोग नहीं रह जाता, फिर भी यह नष्ट नहीं होता। अन्य साधारण व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए उसका उपयोग बना रहता है। उसके हित के लिए इस जानकारी का सूत्रपात उसे महापुरुष के माध्यम से होता रहता है। यह संयोग है क्या? स्वस्वामी शक्तियोह स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति अर्थात दृश्य जो मोक्ष दिलाता है, और स्वामी शक्ति पुरुष, इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि संयोग है। यह दोनों साथ साथ कार्य करें, हमें उपलब्ध हो, हमारे साथ इनका संयोग हो, इनका मिलना संयोग है। इस संयोग के बिना साधन जागृत ही नहीं होता। संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के नष्ट होते ही संयोग भी नष्ट हो जाता है। यही हान है, पुनर्जन्मादि दुखों का अत्यंत अभाव है। यही चेतन आत्मा का कैवल्य पद है। गुरुदेव कहते थे, हानि हो जिससे चौरासी, अर्थात अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। इन चार रूपों में प्रसारित अनंत सृष्टि का अंत हो जाना, भव बंधन का छूट जाना हान है। यह हान विवेक ख्याति से आता है। विवेक ज्ञान के समय साधना ज्ञान की सात भूमिकाओं से होकर गुजरती है। सातों में दक्षता आ जाने पर अशुद्धि का अंत होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति योग के अनुष्ठान से होती है, जिसके आठ अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। यम पांच हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सतत अभ्यास से देश, काल और जन्मादि की सीमा से ऊपर उठते ही ये यम सार्वभौम और महाव्रत बन जाते हैं। चिंतन द्वारा वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन और उत्कर्ष जन्म परिवर्तन है। उत्कर्ष जिस स्तर तक है, वैसा ही जन्म भविष्य में मिलता है। जन्म परिवर्तन से यमों के पालन में व्यवधान नहीं पड़ता, तब वे महाव्रत हो जाते हैं। यम सद जाने पर नाम रूप किसी भी देश में चित्त लगाने से तत्क्षण सुरत लग जाती है। गर्मी सर्दी इन यमों के पालन में बाधक नहीं रह जाते। यम इन अवरोधों से बाधित न होने पर, इससे ऊपर उठ जाने पर सार्वभौम कहलाते हैं। योग का दूसरा अंग नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति का समुच्चय है। वितर्क अर्थात विजातीय तर्क इन नियमों के पालन में बाधा डालते हैं। इसके निवारण के लिए वितर्कों के विरोधी भावों की संकल्पना करनी चाहिए। यम नियमों के परिपालन से भजन में शांत, स्थिर, सुखपूर्वक बैठने की क्षमता आती है। जो योग का तृतीय अंग है, आसन। योगासन के नाम पर समाज में तरह तरह के शारीरिक व्यायाम सिखाए जा रहे हैं, जबकि योग से उनका दूर का भी संबंध नहीं है। योग सम्मत आसन यम नियमों के सहज ढल जाने के कारण उनके पालन में प्रयत्न की शिथिलता आने और परमात्मा में मन लगाने से संपन्न होता है। यदि बाह्य शारीरिक व्यायाम ही आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। आसन सधते ही द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। इसके उपरांत प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो साधक को विचलित कर सके। राग द्वेषादि द्वंद्व साधक पर अब प्रभाव नहीं डाल पाते। आसन की परिपक्वता में श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। किया गया था आसन और अवस्था प्रकट हो गई प्राणायाम की। जब आसन में सुखपूर्वक सुरत स्थिर हो जाती है उस समय श्वास जो हम लेते हैं अर्थात सजातीय प्रवृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति और प्रश्वास अर्थात जो हम आप बाहर निकालते हैं, त्यागते हैं, विजातीय प्रवृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति, इन दोनों का नियंत्रण हो जाता है। श्वास एक निर्धारित आयाम में अर्थात नाम या रूप में प्रवाहित होने लगती है। इसी का नाम प्राणायाम है। यम नियमों के परिपालन से आसन की अवस्था आई और आसन सधते ही प्राणायाम की स्थिति प्रकट हो गई। प्राणायाम के चार क्रमोन्नत सोपान है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, देश काल और संख्या द्वारा देखा जाता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर देखती है, आभ्यंतर वृत्ति ईश्वर पथ में योग साधना के अंग प्रत्यंगों का विश्लेषण करती है। चिंतन बाह्य वृत्ति का है तो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि किस देश में कितने समय तक रुका, वहां से उसे हटाकर स्तंभ वृत्ति में लगाएं। इसी तरह आभ्यंतर वृत्ति में गया चित्त विवेक, वैराग्य, शम, दम किस देश में कितने समय तक रुका, संख्या द्वारा ज्ञात करें और वहां से हटाकर स्तंभ वृत्ति में लगाएं। इस प्रकार निरीक्षण करने से एक स्तर ऐसा आता है कि बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, बाह्य और आंतरिक विषयों का सर्वथा रुक जाना चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम संपन्न होते ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा और साधक के बीच पड़ा वृत्तियों का आवरण क्षीण हो जाता है, ईश्वर प्रतिभासित होने लगता है, मन में स्वरूप को धारण करने की क्षमता आ जाती है। आरंभिक अवस्था में साधक का मन नाम या रूप में टिकता नहीं। प्राणायाम के सधते ही यह विचलन समाप्त हो जाता है। नाम या रूप में कहीं भी सूरत स्थिर करना चाहे कर सकेंगे। योग का पांचवा प्रस्तर है प्रत्याहार। विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के साथ तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। जिन विषयों से इंद्रियां प्रभावित थीं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्याहार सधते ही इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, जो जितेंद्रिय पुरुष की अवस्था है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन का द्वितीय पाद साधन पाद पूर्ण होता है, जिसमें योग के आठ अंगों में से पांच यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का निरूपण इस पाद में हुआ। शेष तीन अंगों धारणा, ध्यान और समाधि को महर्षि ने अग्रतः तृतीय पाद विभूति पाद के अंतर्गत किया है, क्योंकि लक्ष्य परमात्मा को धारण करते ही ईश्वर द्वारा मिलने वाली विभूतियां ध्यान और समाधि स्तर में भी प्रकट होने लगती हैं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया जाएगा। हरिओम तत्सत।